मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 14 जनवरी 2019 है, मकर संक्रांति का दिन। तो सबसे पहले तो मैं इस मकर संक्रांति के अवसर पर आप सभी की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ में बधाई भी देता हूं। और इनफैक्ट सच पूछिए फ्रेंड्स, तो जो कल 13 जनवरी का दिन था, वह भारत का एक बहुत ही अद्भुत दिन होता है। अद्भुत दिन इस मायने में कि आप देखिए, दिन है 13 जनवरी और इस एक ही दिन में पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा में लोहड़ी कितने धूमधाम से मनाई जाती है। एक्सक्लूसिवली मैं बता रहा हूं, अदरवाइज तो पूरे देश में ही मनाई जाती है। फिर आप देखें कि साउथ कैसे पोंगल के पर्व में डूबा रहता है। अगर आप पूर्व, उत्तर पूर्व भारत में चले जाएं तो वहां आपको प्रकाश पर्व मनाता हुआ दिखाई देगा। पश्चिम भारत में पौष पर्व मनाया जाता है, पूर्वोत्तर पूर्व असम में बिहू का त्यौहार मनाया जाता है और मध्य भारत और कह लीजिए शेष भारत में ये सारी चीजें हमें समन्वय रूप में दिखाई देती हैं। दोस्तों, यह है वास्तविक हिंदुस्तान। और कल जो लोहड़ी का उत्सव मनाया गया, पोंगल, प्रकाश पर्व, पौष पर्व और बिहू, इन सब के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत अपनी ओर से बधाइयां देता हूं। दोस्तों, ये देश ही है उत्सव का देश, त्योहारों का देश, पर्वों का देश, यानी कुल मिलाकर यह कि उत्साह और प्रसन्नता से भरा हुआ देश। और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और साथ ही प्रयत्न भी करें कि हम अपने देश के इस उत्साह को और इस प्रेम की धारा को लगातार प्रवाहित रख सकें और प्रज्वलित भी रख सकें। दोस्तों, अभी मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली के दौरान खासकर जो वर्ल्ड बुक फेयर था, उसमें ज्यादा से ज्यादा समय तक मैंने रहने की कोशिश की। और आपको मेरी आवाज से थोड़ा सा लग रहा होगा, काफी कुछ लग रहा होगा कि मेरा गला बैठा हुआ है, जो सच भी है। इनफैक्ट लगातार बोलते रहने के कारण ये गले की ये हालत हुई है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा जो आज गला बैठा हुआ है वह एक सार्थक बातचीत के कारण बैठा हुआ है। और अगर सार्थक काम करने में थोड़ी तकलीफ भी उठानी पड़े, नुकसान भी उठाना पड़े, तो वह शिरोधार्य है। तो आज आप मुझे थोड़ा सा मार्जिन देकर के चलेंगे मेरी खासकर आवाज को, और मुझे पूरा यकीन है कि कल तक ये आवाज ठीक हो जाएगी, क्योंकि कल तो जो स्थिति थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सोमवार को मेरे गले से आवाज निकले ही नहीं। और 5 साल से जो लगातार यह क्रम चला आ रहा है, एक व्रत जैसा जो अभियान चल रहा है, उसमें बाधा ही न पड़ जाए। लेकिन आप सबकी शुभकामनाओं के कारण उस बाधा को पार करने में मैं सफल रहा हूं। एक बात जो मैं आज के लाइफ मैनेजमेंट में फ्रेंड्स अपने नौजवान साथियों से स्पेशली कहना चाहूंगा वो ये कि जब मैं बातचीत कर रहा था फ्रेंड्स से, आप सबसे, तो मुझे बहुत सारी आप लोगों की परेशानियां और जरूरतों का एहसास हुआ। और सच पूछिए तो बुक फेयर में आने का मेरा एक बड़ा मकसद यही होता है कि घर में मैं रहता हूं तो किताबों के बीच रहता हूं, अपने परिवार के सदस्यों के बीच, दोस्तों के बीच रहता हूं, या फिर मैं अपने स्टूडेंट्स के बीच में रहता हूं 15-15 दिन के लिए साल में 2 बार। और इस मेले में मुझे वो दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, मुझे पुस्तकें भी मिल जाती हैं और मुझे अपने प्रिय स्टूडेंट्स भी मिल जाते हैं। और इस बार तो मिलने वालों की संख्या कुछ जरूरत से ज्यादा ही रही, शायद उसी का परिणाम आप मेरी आवाज के इस रूप में देख रहे हैं। मैं भी स्टूडेंट से बातचीत खासकर इसलिए प्रत्यक्ष रूप से करना पसंद करता हूं ताकि मुझे उनकी जरूरतों का सही में एहसास हो सके, चाहे वह उनकी मानसिक जरूरत हो, चाहे वह उनकी भावनात्मक जरूरत हो, चाहे वह उनकी इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट ही क्यों न हो, या फिर दूसरे तरह की सुविधाओं की ही आवश्यकता क्यों न हो। उदाहरण के तौर पर जब मेरी कई स्टूडेंट से बात हुई तो उसमें से मैं एक स्टूडेंट की बात को ले रहा हूं जो एक तरह से दूसरे के भी प्रतिनिधित्व करता है या पूरे के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने मेरी एक किताब ली थी, आप आईएएस कैसे बनेंगे, किताब उन्होंने ली। उन्होंने दरअसल शुरू में मुझसे एक प्रश्न किया था कि सर, करंट अफेयर्स को हम कैसे समझें कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब उन्होंने ये प्रश्न किया तो फिर मैंने उन्हें उनसे पूछा कि क्या आपने मेरी ये किताब पढ़ी है, तो उन्होंने कहा कि हाँ सर मैंने किताब पढ़ी है। और फिर उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ा कि मैंने केवल यही किताब आपके नहीं पढ़ी बल्कि इसका जो पार्ट टू है, लगभग 2-3 साल के बाद पार्ट टू आया था, 2 साल के बाद, उन्होंने कहा कि मैंने वो किताब भी आपकी पढ़ी है। फिर मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या आप मेरा डेली ऑडियो लेक्चर सुनते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर मैं नहीं सुनता हूं। ठीक है, फिर मैंने उनसे जो भी बात कही, अब आप जो विश्लेषण है इसके विश्लेषण को समझने की कोशिश कीजिए। चूंकि ये जीवंत उदाहरण है मित्रों, इसलिए मैंने अपनी किताब की बात यहां कही है। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं कोई अपना ही उदाहरण ले रहा हूं, दरअसल ये स्टूडेंट का उदाहरण है जो मुझसे जुड़ा हुआ है, बस फर्क इतना ही है। मैंने उनसे कहा, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैंने उनसे कहा कि आपने मेरी किताब पढ़ी, आपको अच्छी लगी, तभी आपने दूसरी किताब ली, उसका भाग दो लिया। बोला कि हाँ सर तभी मैंने भाग दो लिया और भाग दो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। उनको नहीं मालूम था कि वो आगे कहां फंसने वाले हैं। मैं कहा कि जो पार्ट वन है आप आईएएस कैसे बनेंगे का, जो भाग एक किताब है, आप देखिए कि उसी के ऊपर डेली ऑडियो लेक्चर के बारे में लिखा हुआ है कि ऐसे फ्री डेली ऑडियो लेक्चर आता है। बोले हाँ सर मैंने उसे देखा है। तो मैंने कहा कि देखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने सुना शायद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर मैंने नहीं सुना। मैंने कहा कि क्या आपने एक बार भी नहीं सुना? बोले नहीं सर मैंने एक बार भी नहीं सुना। बात खत्म हो गई, और मैंने बात खत्म नहीं मतलब उस तरह की बात पूरी हो गई। आपसे जो मैं बात कर रहा हूं वो खासकर जो संवाद के स्तर पर है वो लगभग लगभग पूरी हो गई। फिर मैंने उनसे बताया कि अगर आपने सुना होता तो आज आप ये प्रश्न नहीं कर रहे होते कि सर मैं करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करूं, कैसे मुझे पता लगे कि कौन सा टॉपिक या कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मेरी तुरंत समझ में आ गया। फ्रेंड्स देखिए अब उनसे गलती कहां हुई। जैसे उन्होंने किताब खरीदी और वो किताब उन्हें पसंद आई और उसी किताब के ऊपर ही डेली ऑडियो लेक्चर के बारे में दिया हुआ है। मेरा उनसे आग्रह था कि देखिए एक बार आप सुनते, दो बार सुनते, जो चार पांच बार सुनते, और अगर आपको पसंद नहीं आती तो आपको पूरा अधिकार है कि आप उसे रिजेक्ट कर दीजिए, कभी भी मत सुनिए। लेकिन कम से कम अगर आपको मेरी किताब पसंद आई तो आप उसे सुनिए तो, और अगर आप वो सुन रहे होते तो आपकी ये समस्या 2 साल पहले ही सॉल्व हो चुकी होती। मित्रों मैं इसके माध्यम से कहना क्या चाह रहा हूं, अब मैं अपने मूल मुद्दे पर आता हूं। और देखिए मैं इस तरह की घटनाओं को आप जानते हैं कि आप लोगों के बीच से ही उठाता हूं ताकि वो घटनाएं जीवंत रूप में आप महसूस कर सकें, और सच इससे भी बड़ी बात यह है कि आप उस पर यकीन कर सकें। अब आप देखिए कि यहां जो तैयारी का आपको स्वरूप दिख रहा होगा या जो मानसिक संरचना दिख रही होगी वो बिल्कुल ही एक अलग तरीके की, यानी आधी अधूरी, अनजानी सी, बिखरी सी और उथली सी मानसिक संरचना यहां आपको दिखाई दे रही होगी। बिखरी बिखरी सी इसलिए कि हम किसी भी एक चीज के टोटलिटी पर यकीन नहीं कर रहे हैं। आपको टोटलिटी पर यकीन करना होगा, खासकर अगर आप आईएएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि जब आप आधी अधूरी तैयारी करते हैं फ्रेंड्स आईएएस के एग्जाम के बारे में या बड़ी किसी भी चीज के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां मैथमेटिक्स काम नहीं करता है। मैथमेटिक्स के फार्मूले के आधार पर आप कह सकते हैं कि अगर मैंने आधी अधूरी तैयारी की है तो मुझे आधी अधूरी सफलता मिलेगी, राइट? ये मैथमेटिक्स है। अगर एक व्यक्ति 8 घंटे में 4 फीट गड्ढा खोदता है तो उसके आधे यानी कि 2 घंटे में वो कितने फीट गड्ढा खोदेगा तो आप उतना गड्ढा बता सकते हैं। लेकिन यहां मुश्किल है आईएएस की तैयारी में कि वो गड्ढा ही नहीं खोदेगा, यानी कि फिर 0। आधे अधूरे तैयारी का जो परिणाम होगा वो 0 होगा, आधा नहीं। इसीलिए टोटलिटी पर आपको विश्वास करना होगा किसी भी बड़े काम के लिए। मैं आईएएस को आधार इसलिए मान रहा हूं क्योंकि मेरी अभी जो मुलाकात हुई है उसमें 90% स्टूडेंट आईएएस की तैयारी करने वाले ही थे। दूसरी बात, आपको उथलेपन से मुक्त होना होगा। उथलापन मतलब यह है कि हम किसी भी चीज को बिल्कुल धरातलीय स्तर पर देखते हैं, सरफेस के लेवल पर देखते हैं। किताब को आपने सरफेस के लेवल पर पढ़ा, चीजों को आपने सरफेस के लेवल पर सुना, अपने आसपास के वातावरण को आपने बहुत ही सतही तौर पर ऑब्जर्व किया। सतही तौर पर तो हर कोई ऑब्जर्व कर रहा है, सतही तौर पर तो हर कोई पढ़ भी रहा है, सुन भी रहा है, फिर आप अपने आप को कैसे आईएएस के लायक बना सकते हैं, क्योंकि आपको दूसरों से भिन्न तो बनना है ताकि यूपीएससी आपको चुन सके, या यूं कह लीजिए कि प्रकृति आपको चुन सके, या यूं कह लीजिए कि समाज आपको चुन सके। तो आपको कहीं ना कहीं भिन्नता तो दिखानी होगी, और यह भिन्नता एक सकारात्मक दिशा की भिन्नता होगी, योग्यता परक भिन्नता होगी। और ये जो भिन्नता होती है मित्रों, इसमें एक चमक होती है, चकमक पत्थर की तरह चमक होती है, वो झलकती है, बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, वो आपकी बातचीत में, आपके हाव भाव में दिखाई दे जाता है और सामने वाला आपका चयन कर लेता है। तो दोस्तों, आज खासकर वर्ल्ड बुक फेयर के जरिए मुझे आप लोगों से जो एक टॉपिक मिला है उसकी मैंने चर्चा की है, और उसके आधार पर बस केवल मैं यही बात आपसे आज कहने जा रहा हूं कि प्लीज टोटलिटी में विश्वास कीजिए, प्लीज डेप्थ में विश्वास कीजिए, आधे अधूरे तरीके से नहीं, पूरे तरीके से फील्ड में आइए, आप देखिए सफलता मिलेगी। आधे अधूरे तरीके से लंबे वक्त तक भी सफलता नहीं मिलेगी, पूरे तरीके से छोटे वक्त में ही आप सफलता का वरण कर लेंगे। मित्रों, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, और इसी के साथ ही अब आज के लिए मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।